اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ سچ ہے نا، کیسے اللہ کی ذات نے مختلف لوگ پیدا کیے، رنگ پیدا کیے۔ یہ تو السنتکم ہے، یہ لسان کی جمع ہے، رنگ نہیں مراد اس سے بلکہ لینگویج، ٹاکنگ، جو باتیں کرتے ہیں۔ زبانوں کے اختلاف انسانی تقسیم کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کبھی سوچا ہے، کوئی آتا ہے تو انگلش بولنے لگ جاتا ہے، کوئی نوش بولتا ہے، کوئی اسپینش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، اور کوئی خیر سے پنجابی بولتا ہے۔ فرق کہاں سے آیا؟ یہ اتنی زبانیں کہاں سے پیدا ہوئیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اب آپ جب اس صورت میں سے لفظ آیت ڈھونڈیں گے نا، تو آپ آگے آگے اس کی آیت بھی لکھ لیں کہ کتنی نشانیاں اور کیا کیا ہے، تو واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بہت محبت آئے گی، بہت پیار آئے گا کہ کس طریقے سے اس نے مختلف حالات سے انسان کو دوچار کیا۔ پیچھے والی آیت کے ساتھ اگر اس کو ملائیں تو یہاں بہت ہی خوبصورت سبق ہے کہ زندگی کی شاہراہ بڑی کٹھن ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، ہجوم ہیں، غم کے اندھیرے ہیں، کہیں ناکامیوں کے چرکے ہوں گے، کبھی مایوسیوں کی وحشتیں ہوں گی، اس کے باوجود چلتے ہی جاؤ، چلتے ہی جاؤ، اپنے خالق پہ نظریں لگا لو۔ دیکھیے کہ شوہر بیوی دونوں میں سے جس کا اللہ سے زیادہ تعلق ہوگا نا، اللہ اس کی زیادہ مدد کرے گا، اس کے لیے حالات موافق ہوتے جائیں گے۔ جو اپنے شوہر یا اپنی بیوی پہ نظر ڈال کے اللہ کا شکر کرے گا نا، اللہ اس کے دل میں اتنی قناعت بھر دے گا کہ رنگ کا اختلاف ہے، اب زبانوں کا اختلاف ہے، ماحول کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے، چلتا ہی جائے گا، گھر چلتا ہی جائے گا۔ اور جب یہ سب نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، فوراً سوچ لیتا ہے ہائے بس زندگی گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں ایک جملہ اگر بچیوں کو سکھا دیا جائے نا، کچھ نہیں ہوگا، یہ جملہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بس صرف چھوٹی سی بات پہ وہم آنے لگتے ہیں، مطلب شوہر نے کہا بس اب تم ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں نہیں پتہ کیا کروں گا، بس وہ پریشان، یا میری اماں کو فون کر دیں گے، ہائے مجھے طلاق ہی نہ دے دیں، ہائے میری ساس کو نہ بتا دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی لڑائی آخری لڑائی نہیں رہتی زندگی میں، اس کے بعد اور بھی بڑی ہوں گی، کوئی دھمکی آخری دھمکی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ پہ نظریں لگائیں، دل گھر جوڑنے اللہ کے ہاتھ میں، جس بندے کے حوصلے بلند رہیں گے اللہ اس کو استقامت دے گا، اس کو مختلف طریقے سے خوبصورت حالات میں لے جائے گا، آج کے اندھیرے کل کی روشنیوں میں بدلیں گے، آج کی نفرتیں کل کی محبتوں میں بدلیں گی۔ اختلاف تو زیادہ انسان کو بعد میں خوبصورتیوں کی طرف لے آتا ہے، شرط کیا ہے کہ انسان جتنا اللہ کے ساتھ تعلق لگائے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ لآیات للعالمین، اہل علم کے لیے۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، علم والے ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ علم آتا ہے نا، پھر غور ہوتا ہے، پھر فکر ہوتا ہے، پھر انسان توجہ کرتا ہے ان چیزوں پہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر اچھی اچھی امیدیں رکھتا ہے۔ پھر ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا، سونا نہیں ہے یہ، گولڈ نہیں ہے، سونا، سلیپ، باللیلی رات کو، پہلے رات کا لفظ دے دیا کیونکہ اصل سونا رات کا ہی ہوتا ہے، والنہار، اور دن کو بھی۔ یہ کون سا سونا ہے؟ دن چڑھے، ہلولہ، ظہر کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس وقت تھوڑا سا سونا چاہیے تاکہ باقی وقت کام اچھے طریقے سے ہوں، اور جو فجر سے پہلے سے جاگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کی پھر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے ظہر کے قریب، تو چھوٹا سا کیلولہ 10-15 منٹ کا دن میں بھی ہوگا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَابْتِغَاءَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دن کے وقت تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ نیند کیا چیز ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہونے لگی، ہمارے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں یہ نشانی ہے کہ تمہاری نیند تک تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، باقی کام تمہارے اختیار میں کہاں ہوں گے؟ جس طرح تم اللہ کے آگے جھکے ہوئے اللہ کے بندے ہو، اسی طرح تمہاری نیند، تمہارا جاگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ پیچھے ہم بات کر چکے آیت الکرسی کے ضمن میں کہ نیند بھی جسم کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم تھکنے لگتے ہیں نا، تو ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اب کام زیادہ ہے جسم میں، آکسیجن تھوڑی ہے، تو جسم میں نیند آتی ہے۔ یہ غنودگی کا آنا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ सोना चाह रहे हैं। अब आपके पास इतनी एनर्जी नहीं, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो आप थोड़ा आराम फरमाएं ताकि बाकी काम ठीक हो जाएं। आपने देखे खाना खाते ही फ़ौरन नींद आती है, क्यों आती है भला? ये फितरत की प्रोग्रामिंग है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे जिस्म की एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा उस खाने को हजम करने के लिए चाहिए होता है। हम जागेंगे तो आपको पता है, एक तो हम और ही खाते रहेंगे, फिर दूसरा ये कि हम उसमें कुछ और हरकत करेंगे तो एनर्जी बटेगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम सो ताकि स्टमक तुम्हारा काम करने लगे, फिर जब ज़रा खाना थोड़ा सा सेटल डाउन होता है तो बस उठ जाओ। कहा ये कौन कर रहा है, खुद ही हो रहा है ये सब कुछ। आप देखिए किसी को रात को नींद ना आती हो, ज़रा उससे पूछे रात कितनी लंबी है। बेख्वाबी की कोई दवा तो आज मिले ना मिले, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखा दी। आप अगर प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं बुक रखते हो तो उसमें एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा गारितिन नजूमी वहदातिल उयूनी, के अल्लाह सितारों को रास्ता दिखाने वाले, कुछ इस तरह की बेख्वाबी की एक दुआ है कि जिसको रात को नींद नहीं आती वो ये दुआ पढ़े। और कुछ नहीं है तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मुझे नींद दे दे, कुरान ही पढ़ना शुरू कर दें, फिर देखें कितनी नींद आएगी। उठ के नफिलों की नीयत करें कि चलो मैं नफिल ना पढ़ लूँ तो फौरन नींद आएंगी। ये अल्लाह के हाथ में है। वब्तिगाउ कुमिन फतली ही, और उसका फजल ढूंढना, दिन को तुम काम करोगे मेहनत करोगे, रात को सोना दिन को मुआश, ये है फितरत का असूल। ये नाइट शिफ्ट्स जो है ना, ये फितरी असूल नहीं है। बता दें आज मर्दों को जाके क्या करें, नाइट शिफ्ट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, डबल शायद पे होती है, क्या करना है? नींद ख़राब। आप कहते हैं कि आप एक रात जागते हैं ना, तो आप उसके बदले में पूरा एक हफ्ता भी सोएंगे तो आपके जिस्म को वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपको इसमें मिलती। हाँ होगा कि आपको गुस्सा और ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा सीख पा रहेंगे, आप और ज़्यादा अपने आप को मिसफिट फील करेंगे। तो फितरत के साथ चलिए, इंशाल्लाह आपका जिस्म आपका साथ देगा, वरना सेहत दिन ब दिन डाउन होगी। कभी एक दिन जाग लेना मजबूरी या थोड़ा बहुत और बात है, लेकिन हमेशा से जागना और इस तरीके के काम करते रहना, ये जो है ये दुरुस्त नहीं होते। फिर उसके बाद फरमाया इन नफी ज़ालिक लिक़ौमी यस्माउन, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो सुनती है। अब आप देखिए पीछे निशानी थी आलिमों के लिए, इल्म वालों के लिए, यहाँ निशानी है गौर व फिक्र से सुनने वालों के लिए। वो क्यों? नींद का तस्कर आया ना, जब इंसान सोता है तो सुनता नहीं है। जैसे अगर आप में से कोई इस वक्त भी सो रहा है तो वो सुन नहीं रहा। कौन कौन सो रहा है पता ही नहीं है क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। तो सुनने की बात कर दी कि नींद की सूरत में तुम्हारा सुनना ना सुनना एक बराबर हो जाता है। कानों पे आवाज़ टकरा रही होती है लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही होती, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर किया करो। आज के बाद अब आपने अपने 24 घंटों की चीज़ों को नोट करना है कि अल्लाह मेरे साथ क्या कुछ तूने लगा दिया। व मिन आयातिही युरीकुमुल बर्क खौफं व तमा, और उसकी कुदरत की निशानियों में ये भी तो है कि वो दिखाता है तुम्हें बिजलियाँ डराने और उम्मीद के लिए। व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन, और उतारता है आसमान से पानी, कौन सा? बारिश का। फिर उस पानी के साथ क्या होता है? फयुह्यी बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, फिर वो जिंदा करता है उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद। इन नफी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमी याक़िलून, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। है कोई इसमें ऐसी चीज जो हमने कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो? अल्लाह ताला एक एक चीज हमारे सामने लाकर हमें गौर की दावत देते हैं कि ऐसे ही ना शोर मचाते रहा करो, गर्मी बड़ी है, सर्दी बहुत है, हाय आज बारिश है, आज बर्फ़ बहुत है। इन निशानियों के पीछे अल्लाह को ढूंढो। एक एक शिल्त ऐसी है कि जो तुम्हें तुम्हारे रब से जोड़ देगी, तुम्हें लेके जाएगी। और जो लोग इन निशानियों पे गौर नहीं करते, अल्लाह ताला का कुर्ब नहीं पाते, तो उसने तो इनमें से किसी चीज़ से कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को समझने से ज़्यादा दिल से सुनने की ज़रूरत है कि अल्लाह कैसे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। आप ही लोग देखेंगे कि जब बर्फ़ छटेगी तो नीचे से कैसे सब्जा निकलेगा। आज आप इस बर्फ़ में कोई बीज डालें, कुछ निकल सकता है? फ्रीज़ हो जाएगी चीज़ हमारे घरों में, फ्रिजों में पड़ी पड़ी, लेकिन अल्लाह ने बीजों को कैसे प्रिजर्व किया हुआ है कि बर्फ़ के छटते ही हर तरफ सब्जा। युह जी बिहल और दबा दम होती, हाँ ऐसे लगता है हर चीज़ डेड हो जाती है सर्दियों में, फिर एकदम ज़िंदगी आती है। गौर नहीं करते। इन नफी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी याक़िलून, देखिए यहाँ अक़ल की बात है। कोई इस्लाम दीन को ना भी ले, सिर्फ अक़ल से पूछे तो ये चीज़ें बताती हैं कि खुदा है। एथीज़म का रद है इस आयत में कि कैसे अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को बयान करके तुम्हें सोचने की दावत देता है। फमिन आयाती ही अंतकूम अस्समा वल अर्दु बि अम्री ही, और इसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये है कि कायम है आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से। खड़ा हो सकता था ये आसमान? सूरत रात में हम पढ़ चुके, बग़ैरी आमदिन तरौनहा, बग़ैर सतूनों के तुम देखते हो इसको। है कोई सतून? आप एक छोटी सी छत बनाएं जिसके नीचे साइडों पे कुछ भी ना हो तो क्या बनेगा? नई छत बनेगी ना। आज अगर बग़ैर किसी पिलर के कोई छत बनती भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ टेक्निक होती है, अदरवाइज छत कायम नहीं रहती। यह आसमान किसके हुक्म से खड़ा है? हम क्यों नहीं खड़े हो पाते? हम अल्लाह के रास्ते में इस्तकामत क्यों नहीं इख्तियार करते? ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، फिर जब वो बुलाएगा तुमको ज़मीन में से तो तुम फौरन बाहर निकल आओगे। अल्लाह एक पुकार लगाएगा, यूं कब्रों से निकलोगे। आज मिट्टी में दफन होते जा रहे हो, कल जब एक पुकार लगेगी तो उठ के बाहर आ जाओगे। हम पढ़ते ना कि जब कब्रों से लोग निकलेंगे तो कहेंगे, मम बासना मिम मरकदीना, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। ये अल्लाह के वादे हैं। एक जगह आता है कि वो अपनी कब्रों से यूं उठेंगे, यंसिलून, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। इतना कुछ जिस रब का है, तुम उसके क्यों नहीं बनते? देखिए, इन आयात को यूं ना जाने दी, अपने दिल को नरम करें। इतनी बड़ी ज़ात का कलाम सुन रही हूँ, इतनी बड़ी ज़ात के साथ मेरा नाम लग रहा है कि वलहू मन फिस समावाति वल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कुल्लुल लहू क़ानितून, सब इसके ताबे फरमान है। मेरा क्या हाल है? क्या मैं क़ानिता हूँ? क्या मैं भी अल्लाह ताला के आगे झुकी हुई हूँ? क्या वाकई मेरे अंदर भी आजजी है? आज तो अल्लाह के हुक्म को सुनकर मैं बिस्तर से ना उठूँ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को सुनकर मैं ना उठूँ, तो क्या कल भी मैं सोती रहूँगी? आज तो मैं क़ानित नहीं हूँ, आज तो अल्लाह की फरमाबरदारी कर नहीं पा रही, कल तो करनी पड़ेगी ना। किस तरह इंसान अल्लाह ताला के आगे अपने आप को बड़ा समझता है, इतना कुछ है उसका, और कभी गौर ही नहीं करता। वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्म युईदुहु, तीसरी दफ़ा यह आयत आई है इन पिछले चंद पारों में। और वही है जो तख्लीक़ की इब्तदा करता है, फिर फना करने के बाद वो इसे दोबारा बनाएगा। और वहुवा वनु अलैही, और ये इस पर बड़ा आसान है। आहवन हौन से आसानी, नरमी, सकीनत, यहाँ आसानी के मानों में कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है। हीन कहते हैं ऐसा काम जो करने वाले की ताकत और कुदरत से कम हो, यानी किसी को ऐसा काम दे देना जो उसको बड़ा आसान लगे। का अल्लाह के लिए कुछ नहीं मुश्किल, पीछे हम पढ़ चुके ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको थकाती ही नहीं ज़मीन व आसमान की हिफाजत। कहा तुम्हारा पहली दफ़ा पैदा करना हो या दोबारा करना हो, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए है बरतर शान आसमानों और ज़मीन में। कैसे मसलुल आला कैसे है अल्लाह ताला के लिए कि उस जैसा तो कोई है ही नहीं है। मसल अरबी ज़ुबान में हर ऐसी चीज़ के लिए बोलते हैं जो किसी दूसरे से कुछ मुमासलत और मुनासबत रखती हो। जैसे मिसाल का लफ्ज़ उर्दू में मसल नूर ही का मिशकात, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी मिसाल है। लैसा का मिसल ही शैयन व हुवस समीउल अलीम, सूरह शूरा में आएगा कि उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं। तो फिर इस जुमले का क्या मतलब है कि लहुल मसलुल आला, मतलब क्या है कि अल्लाह की शान, उसकी तारीफ, उसका वसफ सबसे आला है। अल्लाहु अकबर है, जैसे अल्लाहु आला, इसी तरह उसकी मिसाल भी आला है। एक लफ्ज़ होता है मसल, जैसे यहाँ वसफ तारीफ और शान के मानों में। एक लफ्ज़ होता है मिसल, मीम की जेर के नीचे कसरा के साथ, तो उसका मानी होता है मुशाबा, उसी के जैसा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वसफ मेरे हैं उस जैसे तो किसी के नहीं, और मेरे बड़े आला हैं। आसमानों में भी उसकी मिसालें और ज़मीन में भी, यानी ना कोई फरिश्ता उस जैसा है, ना कोई जिन, और ना ज़मीन के अंदर मौजूद दूसरे। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब और हिकमत वाला है। इसके बावजूद आप देखिए कि लोग शिर्क करते हैं। इतनी बातें इकट्ठी सुनने के बाद आपको अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत महसूस होती है कि इतना कुछ उसने दिया, इसके बावजूद लोगों का हाल क्या है कि वो शिर्क करते हैं। इसीलिए अगली आयतों में अल्लाह ताला मुशरिक और मोमिन का फ़र्क बयान करते हैं। दरब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारे ही हालात में से, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में जो हालात पेश होते हैं उसी में से एक मिसाल है। क्या हल लकुम मिम्मा मलकत ईमानुकुम, क्या बताओ तुम्हारे गुलाम तुम्हारे हिस्सेदार होते हैं उस माल में से, मिन शुरका अफीमा रज़क़नाकुम, उस माल में से जो हमने तुमको अता किया, फ़न तुम फी ही सवा उन के तुम बराबर के हिस्सेदार बन जाओ, तखाफू न हम हत्ता के तुम डरने लगो इनसे, कखी फतिकुम अनफुसिकुम जैसे तुम डरते हो आपस में एक दूसरे से, कज़ालिक नुफस्सिलुल आयाति लिकौमी याक़िलून, इसी तरह हम बयान करते हैं मिसालें उस कौम के लिए जो अक़ल रखती है। क्या मिसाल दी अल्लाह ने, समझ में आती। मुशरिकीन मक्का के एक अमल पर तबसरा है इधर, जब हज या उमरे का अहराम बांधते तो तलबिया पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, यहाँ तक तो हम भी पढ़ते हैं ना लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लेकिन इसके बाद क्या कहते, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं हम हाजिर हैं और तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय इसके जिसे तू खुद अपना शरीक बना दे, और तू उसका भी मालिक है और उस चीज़ का भी मालिक है जिसका वो मालिक है। इस तरह के जुमले बोलते हैं कि गोया कि ये हमारे जो बुत हैं ये अल्लाह के शरीक है क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको शरीक बनाया है। तो उस पे अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी कि ज़रा अकल तो करो, तुम कहते हो कि अल्लाह ने अपनी चीज़ों में कुछ बुतों को शरीक कर लिया, तो क्या तुम अपने लिए ये पसंद करते हो कि तुम्हारा कोई ग़ुलाम हो। आप सब इमेजिन करें, आज ग़ुलाम नहीं है ना कोई मुलाजिम जिसको थोड़े से पैसे दे के आप हर हफ्ते सफाई के लिए बुलाते हैं। आप में से कोई ऐसा अक्लमंद है कि अपने माल को आधा करे पूरा, अपने बैंक की सारी स्लिप्स को जमा करे, सारे कार्ड जमा करके आधे अपने घर में आने वाली मासी के नाम लगा दे और फिर उससे उतना ही डरे जितना कि खुद अपने आप से डरता है, इसलिए कि चलो कोई बात नहीं ना तुम्हें और मुझे एक जितने पैसे मिल जाए सवाउन बराबर हो जाए। सोशलिज्म में ये नारा लगा था। जब कोई एक अपने मुलाजिम को अपनी चीज़ें नहीं बांट सकता तो क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला अपने इख्तियारात कोई अब्दुल्ला शाह गाजी को बांट दे, कोई पीर जिलानी को बांट दे कि चलो जी कुछ काम तुम कर लो कुछ मैं कर लूँ कुछ हम कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। तुम अपने लिए जो चीज़ पसंद नहीं करते अल्लाह के लिए कैसे पसंद करोगे। बलितबल्लज़ीन ज़लमू अख़्वाअहुम बिग़ैर इल्मिन, बल्कि पैरवी करते रहे ज़ालिम अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बग़ैर किसी दलील के, यानी ये जो लब्बैक के लफ्ज़ों में इजाफा था यह अपने बुज़ुर्गों के बारे में ये ख्याल रखना कि वो अल्लाह के कामों में शरीक है असल में इनकी ख्वाहिश है। आज भी देखिए जिस बुज़ुर्ग के साथ लोगों ने कोई चीज़ शामिल करनी होती है शौक़ से कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि नो प्रॉब्लम, ना अकल इस्तेमाल करते ना नसीहत कबूल करते, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे सरपट भाग रहे हैं, हिदायत के दरवाज़े इनके लिए कैसे खुलेंगे। फ़मन यहदी मन अदल्लल्लाह, बस कौन हिदायत दे उसको जिसे अल्लाह भटका दे उसकी नाफरमानियों की वजह से। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनका कोई मददगार नहीं है। ऐसे लोग जो खुद भटकना चाहते हैं उनको क्या मिलेगा। यहाँ तक डांट थी असल में मुशरिकाना अकायद पे। खुलासा क्या पिछली आयतों का जो अभी तक हमने की, इतनी निशानियाँ उसकी, हर शिल्त उसका खबर दे रही है उसका रास्ता दे रही है, कुछ मांगना है तो अल्लाह के पास जाओ, कुछ लेना है तो अल्लाह के पास जाओ, माल दौलत औलाद रिस्क हुसन सब चीज़ों के खजाने उसके पास है। इसके बावजूद लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, और ख़ुद ही मिसालें घड़ लेते हैं कि किसी के पास औलाद है किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। अल्लाह ताला कहते हैं जब इनको ये बात समझ ही नहीं आती तो इनको समझाने की क्या ज़रूरत है। अब इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से हम सबको फितरत की तरह बुलाया गया। बड़ी खूबसूरत आयत है, फ़ाकिम वच्छकल दीन हनीफा, छोड़ो शिरको छोड़ो कब्रों को, छोड़ो बुतों को, पसाब कर लें अपना रुख दीने इस्लाम की तरफ पूरी यकसुई से। यहाँ फा जो है ना ताकीद के लिए आया है, फा अकिम, अल्लाह की वाहदानियत, उसकी कुदरत के सारे दलाइल देख लिए, सारी निशानियाँ देख ली, क़यामत के बारे में जो शक शुबात थे उसका इजाला हो गया, अब सबसे रुख फेरो, तवज्जो हटा दो और इस दीन पे जमा दो, अकीम सीधे कर लो, लकड़ी को ऐसा दुरुस्त और सीधा करना कि इसमें टेढ़पन का नामो निशान न रहे, इसको क़याम कहते हैं। मुराद के कि दीन इस्लाम पर पूरी तरह कारबंद हो जाओ, इस्तकामत रखो, साबित कदमी इख्तियार करो। इसी तरह इकामा कहते हैं किसी चीज की तरफ हमातन तवज्जो करना। हनीफन हाल है, किस हाल में खड़े हो जो बिल्कुल सीधे, फोकस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल गुमराहियों से रुख फेरो, हिदायत और रास्ती की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। इसका ऑपोजिट जनफा होता है। हनफा क्या है? हिदायत की तरफ झुकना, हिदायत की तरफ आना, तवज्जो करना, और गुमराही की तरफ मायल होने को जनफा कहते हैं। कहाँ इस तरीके से उसकी तरफ चलो। यहाँ आप देखिए क्या पता चला, क्या कुरान को पकड़ लो, यहाँ दीन से मुराद के हकीकी दीन को, इस्लाम की रूह को ले लो। वही जो पिछले सबक में बात हुई थी कि इल्मे नाकिस को छोड़ के इल्मे कामिल ले लो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है ये सोचो, बाकी सारे फरोई मामला छोड़ दो, हाथ कहाँ बांधो, कहाँ आग लगी, किसने मुसलमानों को मारा, किसने नबी के कार्टून बनाए, इन चीज़ों का नाम दीन नहीं। दीन इस बात का नाम है कि बंदे को अपने आगाज और अपने इंजाम की फिक्र लग जाए। और ये कौन सी चीज़ है? फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये वो फितरत है जिस पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। ला तब्दील अली खल्किल्ला, और अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की खल्क में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जालिक दीन अल कय्यम, यही सीधा दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यहाँ फितरत की बात हुई, फितरत फतरा, पीछे हम बात कर चुके, फाड़ना किसी चीज़ को। अरब जब किसी काम पर किसी को गुस्सा दिलाते तो फेल को हजफ कर देते थे और इसके मफूल के जिक्र पर ही इक्तफा करते। यहाँ देखिएगा कि ला तब्दील अली खल्किल्ला, यहाँ बिल्कुल वही मिजाज मिलता है कि कलाम में इस तरह जोर पैदा कर दिया कि जो शायद उस काम को करने से ना पड़ता। फितरत अल्लाह, अल्लाह की ये फितरत है, यानी अल्लाह अपने काम यूं ही करता है। मतलब क्या है कि अल्लाह ने तुम्हारी रूहों से जो अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया था ना, उसके तकाजे पूरे करो। अब इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह को छोड़ छोड़ कर दूसरों की तरफ मत जाओ, मत टकराओ, लोगों को मत शिर्क पे लेके जाओ। अब फितरत से एक बात तो यही मालूम हो गई कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो अपनी इताअत और सबमिशन का मादा पैदा किया है कि लोग अल्लाह ही को रब माने, ये फितरत है। इसी तरह फितरत के अंदर एक और चीज़ भी, और वो क्या है? अल्लाह ने जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया है वो करो। औरत की फितरत जो है वो औरत बन के रहे, मर्द की फितरत कह के मर्द मर्द बन के रहे, जानवरों को इंसान ना बनाओ, बिल्लियों को गोश्त ना खिलाओ। अब देखिए कि फितरत कब बदलती है, जब उसके जराए बदल दिए जाते हैं। हम इस पे पीछे बहुत दफा बात कर चुके हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है, जितना आप उसको फितरी माहौल में पालें, उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने को नेचुरल रखेंगे, उतना वो अल्लाह से करीब होगा। हम जितना लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ों का आदी कर देते हैं, उतने वो अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। ये सारे मानी इसमें जमा होते हैं कि बच्चों को इस्लाम से दूर ना करो ताकि बड़े होकर वो इस्लाम से दूर ना हो। हम सब की फितरत में है कि अल्लाह को चाहें, बस उसी से मोहब्बत करें। जब हम अल्लाह से नहीं मोहब्बत करते ना, तो फिर हम किसी और से करने लगते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसान की फितरत में ये बात गुंदी हुई है कि वो अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक जोड़े। देखिए बच्चा माँ की लोरी सुन के सो जाता है ना, ये कुरान क्या है? सिर्फ समझने के लिए कह रही हूँ कि ये भी तो अल्लाह की तरफ से लोरी है ना, ये अल्लाह का कलाम है। हम जब इस कुरान से जुड़ते हैं ना, तो हमारी फितरत उभरती है। आप इस वक्त कुरान सुनते हैं और खुद को चेक कर रहे होते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, कोई कुछ नहीं आपको कहता, लेकिन हर आयत आपको अपने ऊपर लगती है, लगती है कि नहीं? ये आपकी फितरत की पुकार है, मैचिंग होने लगती है, ये फितरत पे पड़े हुए पर्दों को जाग करती है चीज़। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी नफ्सियाती परेशानियाँ, तुम्हारे टेंशन, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या ना समझ आने वाले गम जो चिपके हुए, इसकी वजह क्या है कि तुम कुरान से दूर हो। करो क्या? फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। ये कुरान जितना बंदे को अंदर से सुकून देता है, इतना कोई और नहीं दे सकता। तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के तकाज़ों पे ले आओ। कैसे? इसका तरीका क्या है? कुछ ख़ास काम करें? नहीं, मुनीबीन इलैही, अपना रुख उसकी तरफ करते हुए मुनीब हो जाओ। मुनीब का रूट क्या है? नौब, नून वाव बा, राजेईन का मानी देती है, तौबा करने वाले। नाम भी बड़ा खूबसूरत है, अगर किसी का हो मुनीब, यानी सबसे कटकर अल्लाह की तरफ आ जाओ। मुनीबीन इलैही, फोकस्ड, बिल्कुल हर चीज़ से बेनियाज होते हुए अल्लाह की तरफ आ जाओ। वत्तकू, और उससे डरो, उसका तकवा इख्तियार करो। वाकीमुस्सलाह, और नमाजें कायम करो। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। ये थे फितरत के तकाजे। नंबर एक, हमारी फितरत चाहती है कि हम अल्लाह के हों, जैसे बच्चा चाहता है ना कि सबके हाथों से निकल कर माँ के हाथों में आ जाए, इस तरह हमारी फितरत चाहती है कि अल्लाह से जुड़े। इसी का नाम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब है, अल्लाह की याद में दिलों को सुकून है। इसी का नाम मौत की सूरत में आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिला रब्बी की राधियतम मर्दिया। पलटो, जो लोग फितरत पे ज़िंदगी बसर करते हैं उनकी मौत कलमे पे होती है, तौहीद पे होती है। जो सारी ज़िंदगी शैतान के हाथों से अपनी रूह को बचाते हैं, अपने बदन को, मौत के वक्त शैतान के कब्ज़े में नहीं आते। फिर दूसरा फितरत का तकाजा है वत्तकू, तकवा, हर वक्त अल्लाह की फिक्र। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनाह करते हुए, नेकियां करते हुए, हर वक्त बंदे को अल्लाह की याद हो। इसका अमली इजहार कहाँ होगा? वाकीमुस्सलाह, नमाज। आप देखिए, जहां से चेन तोड़ेंगे वहीं दीन बदल जाएगा। जब अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मौजूदगी का एहसास, उसकी तरफ पलट पलट के आने का दिल, तो उसका अमली तरीका नमाज। और जो नमाज पढ़ेगा तो वो मुशरिक नहीं हो सकता। 5 दफ़ा जिसने दुनिया को पीछे डाल के अल्लाह के हुक्म पे लब्बई का, क्या वो मुशरिक हो सकता है? कौन से मुशरिक? इसका तस्करा अगली आयत में, जहाँ ये मजमून पूरा होगा। मिनल्लज़ी नफर्रकू दीनहुम, उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। वकानू शियान, और खुद गिरोह गिरोह हो गए। देखिए, फितरत से हटाने वाली चीज़ फ़िरका बंदी, तफरकेबाजी, जमात बंदी, गिरोह बंदी, जिन्होंने फितरत के रास्ते से हटा के लोगों को गैर फितरी चीज़ों पे रखा। यहाँ लफ्ज़ शिया आया, शिया ऐसी जमात को कहते हैं जो किसी मुब्तदा को फॉलो करे, मुब्तदा कहते हैं इमाम को, ऐसी जमात जो किसी इमाम को फॉलो करे। असल में वजह बता दी कि कोई गिरोह बनता ही कब है? जब मरकज़े अकीदत बदल जाता है। मरकज़े अकीदत बदलते हैं ना, तो लोग गिरोहों में बट जाते हैं, और गिरोहों में बटने के बाद होता क्या? कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह उसी पे खुशियां मनाने लगता है जिस पे वो थे। जिस चीज को उन्होंने अच्छा समझा उसी पे चल पड़े। आज भी आप देखिए, जब से लोगों ने आइमे कराम के नामों को फॉलो किया, गिरोह बन गए। आज चारों इमामों के एक इमाम को जब फॉलो करेंगे तो इत्तेहाद शुरू हो जाएगा। यहाँ फिरकेबाजी की एक बहुत बड़ी खूबसूरत रीज़न हमें बता दी कि जो लोग फिरकों में पड़ते हैं, असल में फितरत की पुकार से हटते हैं। आप आजमा के देखें, लोगों को कुरान की दावत जो बुरी लगती है ना, कभी इस वजह से बुरी नहीं लगती कि इसको पढ़ने के बाद हमारी औरतें नमाज पढ़ने लग गई हैं, अच्छी बीवियां बन गई हैं, अच्छी माएँ बन गई हैं। इस पे नहीं लोग गुस्सा करते, गुस्सा किस बात पे करते हैं कि इस कुरान से जुड़ने के बाद इन औरतों की अपनी एक आज़ाद सोच बन रही है, ये इस कुरान की तालीम को आम करना चाहते हैं, और दिस एंड दैट। अल्लाह ताला कहते हैं कि उलझो नहीं, इनको छोड़ दो इनके हाल पे, क्योंकि हर बंदा जो करना चाहता है वो वही करता है। देखिए, हर बंदे को सच खुद समझ आता है, उसका दिल गवाही देता है। आप पानी पीते ना, आपको खुद पता चल रहा है कि मुझे कितना ठंडा पीना है, मेरे अंदर उतर रहा है, मुझे अशुद्धि मिल रही है। कोई लाख आपको कहेगा ना, ना पियो ये पानी, ना पियो ना पियो, आप कहेंगे क्यों, मुझे पता है मुझे इसके पीने से प्यास बुझती है मेरी। बिल्कुल इंसान की फितरत जब इस कुरान को देखती है ना, यूं लपकती है जैसे शोला ऑक्सीजन को देख के या कार्बन को देख के लेता है। फितरत पे जो पर्दे पड़े होते हैं ना, उन पर्दों को चाक करने के लिए अल्लाह ताला कभी कभी इंसानों को मुश्किलात में डालते हैं, आजमाइशों में डालते हैं, और कभी खुशियों में डालते हैं। इसका तذکرہ अगली आयतों में आएगा। हम यहाँ तक तिलावत सुनेंगे, दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे फितरत के करीब रखना, कोई मुझसे मेरी फितरत न छीने। आज दुनिया को, इंसानियत को जो बहुत बड़ा आसेब लगा हुआ ना, वो फितरत से हटके जिबिल्लत पे माइल करने वाला है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे अंजाम से महफूज रखे। तिलावत सुनते हैं।
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.